कलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंताहि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग एक सदगृहस्थ अपने घर गृहस्थी में रहकर भी कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिक या आत्मिक विकास कर सकता है, इस बात पर विचार कर रहे थे। एक सदगृहस्थ या कि श्रावक के आध्यात्मिक विकास के दो प्रयोग जो उससे घर गृहस्थी के सारे पाप से मुक्त करने में कारण बनते हैं वो है अभिषेक और पूजन। अभिषेक और पूजन की प्रक्रिया यदि अत्यंत भावनात्मक होकर के की जाए तो वह भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है। पूजा विशुद्ध राग की प्रक्रिया है। सांसारिक राग और धर्मानुराग, इनमें से जब भी चुनना पड़े तो धर्मानुराग को ही चुनना श्रेष्ठ माना गया है। द्वेष की कोई वैरायटी नहीं होती, द्वेष तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन राग पहले अशुभ छोड़ा जाता है और शुभ राग के सहारे अपने उस वीतराग स्वरूप तक पहुंचा जाता है और वीतराग स्वरूप को पा लेने पर शुभ राग छूट जाता है। छोड़ने की चेष्टा मत करना, नहीं तो अशुभ में जाकर के गिरेंगे। जैसे सीढ़ी छोड़ने की कोशिश करने वाला छत पे बिना पहुंचे सीढ़ी छोड़ दे तो जमीन पे आके गिरता है। इसलिए एक सदगृहस्थ और श्रावक के लिए तो ऊंचाइयां छूने के लिए सीढ़ी की तरह शुभ राग या कि विशुद्ध राग ही है और यह अभिषेक और पूजन विशुद्ध राग की प्रक्रिया है। है वीतरागता का अनुष्ठान, लेकिन भावनाएं अत्यंत धर्मानुराग से भरी हुई हैं तब यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें बुद्धि का काम नहीं है, सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे हैं यहां आपके पास। जब बुद्धि की दीवारें लांग कर कोई आता है तब भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बुद्धिमान जो कि भावना शून्य है वो अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं पहचान सकता, अपने भीतर की भगवत्ता को भी जान सकता है महसूस नहीं कर सकता। जानने की प्रक्रिया रुकने के बाद ही अनुभूति होती है, हालांकि ज्ञान की ही परिणति है अनुभूति, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है कि हम अगर ज्ञान के ही ऊहापोह में लगे रहेंगे तो वो जो अनुभूति का स्वाद है वो नहीं आएगा। इसलिए पूजा तो आचार्य भगवंतों ने बहुत प्रकार से व्याख्यायित किया है उसके महत्व को। पूजा अतिथि संविभाग है। पद्म पुराण में रविशयन आचार्य महाराज हमें उपदेश देते हुए कहते हैं, क्योंकि हम अपने भोग विलास की सामग्री में से कुछ अंश बचा करके और भगवान की सेवा में उनके सम्मुख भेंट करते हैं, इसलिए पूजा अतिथि संविभाग भी है। पूजा में एकाग्रता होती है, इसलिए भाव संग्रह में आचार्यों ने पूजा को पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान के अंतर्गत रखा हुआ है। भगवान के बाह्य वीतराग स्वरूप पर चित्त की स्थिरता और उनके अंतरंग गुणों को चिंतन करना, ये पिंडस्थ और पदस्थ दोनों प्रकार के ध्यान की प्रक्रिया है पूजा। पूजा को आचार्य भगवंतों ने सामायिक के अंतर्गत भी गर्भित किया है, क्योंकि पूजा के दौरान हम पांच पापों का त्याग करके पंचपरमेश्वरी के गुणों का अनुचिंतन करते हैं, इसलिए पूजा में सामायिक भी गर्भित है। पूजा को आचार्य भगवंतों ने स्वाध्याय के अंतर्गत भी रखा है, वो ग्रंथ का नाम आत्म गवेषणा चुकी है, इसलिए उपासका अध्ययन में पूजा को स्वाध्याय के अंतर्गत भी रखा है, क्योंकि उसमें हम भगवान के गुणों से अपनी योग्यता का निरीक्षण करते हैं कि क्या कहते हैं, मैं राग द्वेष से मलिन और आप वीतरागी, पर मेरे भीतर भी आपके जैसे ही वीतरागता का स्वभाव तो छुपा हुआ है। स्वाध्याय की प्रक्रिया भी पूजा में ही संपन्न होती है। एक श्रावक अगर पूजा करता है तो मानिएगा वो अतिथि संविभाग भी, वो ध्यान भी, वो सामायिक भी, वो स्वाध्याय भी, सब उसी में कर रहा है। अगर अत्यंत भावों की निर्मलता और एकाग्रता के साथ इस अनुष्ठान को कोई करता है, कितना महत्व आचार्य भगवंतों ने पूजा का लिखा है, अपन ने उसे एक क्रिया की तरह करना तो शेष रखा है, पर वह इतनी बड़ी प्रक्रिया हो सकती है ये अपने मन में कहीं कोई ऐसा इमेजिनेशन ही नहीं है, ऐसी कोई कल्पना ही हमारे भीतर नहीं होती। हमें आचार्य भगवंतों की कही बात को एक बार गौर से विचार करना चाहिए और इस पूजा के अनुष्ठान का पूरा लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक सदगृहस्थ और शावक के जीवन में ये उसके आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। कोई ये ना समझे कि पूजा करने से क्या होने वाला, नहीं, पूजा अपने आप में पूरी है। जिसको स्वाध्याय, ध्यान ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, वो अकेले पूजा के माध्यम से भी उतना ही कर्मों की निर्जरा और पुण्य का अर्जन कर सकता है जितना कोई इन अन्य धार्मिक क्रियाओं के द्वारा अर्जित करता है। एक ही क्रिया से हम इतनी कर्मों की निर्जरा और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूजा तो हमने 1980 में मुक्तागिरी में जब आचार्य महाराज का चतुर्मास चल रहा था तब देखी थी, वैसी पूजा बहुत कम देखने में आती है। वहां मुक्तागिरी में महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ स्थान है, महाराष्ट्र में आता कुछ पोर्शन, कुछ मध्य प्रदेश में आता, वो सारे लोग एक साथ बैठ करके भगवान के सम्मुख 8:30 बजे से पूजा शुरू होती। उसके पहले तो अभिषेक और फिर जो पूजा शुरू हुई तो चलती है 2:30-3 बजे तक। पूजा का अनुष्ठान इस तरह चलता है, उनके जो उपाध्याय हैं वो बैठ जाते हैं तखत पर, फिर वे अरंत भगवान की, सिद्ध भगवान की पूजाएं जो संस्कृत में लिखी गई हैं, अब नए नए विद्वानों की बनाई हुई नहीं जिनमें कि पूरा का पूरा समय सार जी का उल्था होगा, भगवान के गुणगान है ही नहीं, ये एक ठीक है तत्वानुचिंतन रूप पूजा भी है, लेकिन भगवान की भक्ति रूप पूजा का जो आनंद है वो तो विरला ही कोई ले पाता है। आचार्य महाराज और सारा संघ बिना किसी से कहे, यहाँ तो पहले से 3 दफे कहेंगे हम पूजा करवा रहे हैं, महाराज आप खुआने हैं, और वो में उद्घाटन में चलो रे चार जने श्रीफल लेके चलो, इंद्र कौन बनो हूँ खुआंगे ढकेलो आगे कर दू बोझे है आगे आगे सुबह बोले है पहले वो गंदू तक ले जाए और को नहीं ले जा सकत। अरे दुनिया भर की बात है, पूजा नहीं करत भी तो सब दिखावा है, आप बुराई नहीं मानी, मान जाओ तो मान भी जाओ कछू नहीं का। और वहां पर तो कुछ भी नहीं, आहार के बाद आते थे तो बिना कहे आचार्य श्री का मन होता था सारे संघ का कि बैठ जाएं, और चुपचाप पीछे बैठ जाते थे। वो 200-250 लोग जो पेयर बैठी रहती थी वे वो लाइन बोली जाती वो उसको दोहराते और बस, हाथ में वो मंजीरा लिए हुए हैं उसी की कभी कभी आवाज आ जाती है, बाकी ना कोई ढोल तमाशा है और ना कोई कहीं आडंबर है। बड़े स्वच्छ और निर्मल चित्त से अत्यंत सात्विक और शालीन सादगी पूर्ण वातावरण में पूजा का अनुष्ठान, और वो भी कमती नहीं 8:30 से शुरू हुआ तो 2:30 बजे तक चलेगा। पूछा आचार्य ने कि ये कैसा, बोलते पूजा करनी है तो एक आसन पूर्वक ही की जाएगी, शाम को जाके अपने हाथ से 3:30-4 बजे तक भोजन बना करके और जो भी भोजन करना है वो करेंगे, बस इतना ही। 10 दिन के ऐसे पूजा के अनुष्ठान जिनको अपन महापूजा कहते हैं, एक नित्य महापूजा होती है एक महापूजा होती है। अपन महापूजा में तो थोड़े बहुत अनुष्ठान करते हैं, नित्य पूजा में तो जिस किसी तरह से पूजा के अनुष्ठान की पूर्ति करते हैं। अपने को विचार करना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण कार्य को और हम क्यों इस तरह से संपादित कर रहे हैं, हम चाहें तो उसे और बेहतर ढंग से करके और उसी के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कोई प्रयत्न कर सकते हैं। नित्य महापूजा में दान देना भी शामिल है, और नित्य महापूजा में 8 द्रव्यों के द्वारा भगवान की रोज पूजा करना शामिल है, जिसे सदार्चन भी कहते हैं। जो महापूजाएं हैं उनमें कल्पद्रुम पूजा है जो चक्रवर्ती के द्वारा किमिक्षक दान देकर के की जाती है, जिसमें इंद्रध्वज पूजा है जो इंद्रों के द्वारा संपन्न होती है अकृत्रिम जिनालयों में, उसी को हम यहां पर भी उसी परंपरा से यहां भी हम उससे मनाते हैं, इंद्रध्वज पूजा कहलाती। अष्टानिक पूजा जो कि नंदीश्वर द्वीप में देवों के द्वारा संपन्न होती है, और एक पूजा और है जिसे सर्वतोभद्र पूजा कहते हैं जो कि मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा 10-12 दिन तक जो अनुष्ठान होता है वो सर्वतोभद्र पूजा कहलाती है। महापूजाएं इस तरह से 4 प्रकार की हैं, नित्य पूजा जो रोज भगवान के सामने और अष्ट द्रव समर्पित करके की जाती है वो कहलाती है। इस तरह ये पूजा का स्वरूप या पूजा का अनुष्ठान हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने कर्मों की निर्जरा के उद्देश्य और अपने जीवन के आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा, विशेष रूप से आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, कि रुधिर मरम धावते वारी, जैसे कि रक्त के धब्बे को पानी से धोया जाता है, ऐसे ही श्रावक के जीवन में 23 घंटे तक निरंतर सांसारिक क्रियाओं के बीच होने वाले पाप की मलिनता को धोने के लिए जल के समान अगर कोई अनुष्ठान है तो वो पूजा का अनुष्ठान है। अरहत चरण सपरिया, अरहंत भगवान की जो पूजा है वो ऐसी ही महत्वपूर्ण है। हम इसके बाद अब आज थोड़ी सी चर्चा इस पूजा के अनुष्ठान में शुरुआत में होने वाले अभिषेक की करें। अभिषेक की प्रक्रिया के बारे में भी बहुत सारी बातें तरह तरह से कही जाती हैं। कई बार सुनने में ये भी आता है कि अभिषेक अनिवार्य नहीं है। कई बार कोई इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहता है कि अभिषेक तो सिर्फ मूर्ति के ऊपर जमी हुई धूल इत्यादि को साफ करने के लिए की जाने वाली एक बहुत साधारण सी क्रिया है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि अभिषेक तो आगम सम्मत नहीं है। जाने कितनी सारी बातें हैं जो इस अनुष्ठान के बारे में सुनने में आती हैं, और मन में एक बार आता तो है कि आखिर बात क्या है। वास्तव में ये अभिषेक पूजा का कोई अंग अनिवार्य है भी या नहीं है? पूजा से पहले ऐसे किया जाना चाहिए या पूजा के अंत में किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? इसके लाभ क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हम देखें तो कृत्रिम जिनालयों में जो पूजा की प्रक्रिया होती है वो तो अभिषेक पूर्वक ही होती है, और पूजा से पहले भी होती है और पूजा के बाद में भी होती है। पंच मेरु की वंदना और अभिषेक करते हुए नंदीश्वर दीप में अष्टानिक पर में सौधर्मित्र इत्यादि 16 स्वर्ग के इंद्र पहुंचते हैं, और वहां से वापस पूजा का अनुष्ठान करके अष्टानिक का वापस लौटते समय भी पंच मेरु के जिनालयों की वंदना और अभिषेक करते हुए लौटते हैं, और उस जल को अपने छोटी छोटी सी डिब्बियों में भर करके स्वर्ग ले जाते हैं। ये उल्लेख ग्रंथों में आता है। इसके मायने ये है कि इतनी सारे प्रश्न के उत्तर इतने से एक उल्लेख में हो गए कि पूजा आगम अभिषेक आगम सम्मत है। एक चीज, अभिषेक अकेले धूल जड़ाने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम जिनालयों में अभिषेक होता है वहां तो धूल का कण भी नहीं होता। हमारे मंदिरों में तो धूल जम सकती, वहां तो धूल का सवाल ही नहीं, यानी ये धूल जड़ाने की प्रक्रिया भी नहीं। और अभिषेक जो है वो शुरू में और अंत में दोनों में होता है, इसका मतलब है कि पूजा का अनिवार्य अंग भी है। इतनी छोटी सी चीज है लेकिन अपन इस अनुष्ठान के बारे में इतना मिथ्या प्रचार करते हैं कि धर्म ध्यान करने वाले व्यक्ति को भी एक बार मुश्किल पड़ती है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। फिर आधे अधूरे मन से क्रिया करता भी है तो आधे अधूरे मन से करता है, क्योंकि मन में लगता है कि क्या पता सही है कि नहीं। नहीं करने वाला तो कोई लाभ ले ही नहीं रहा, जो कर रहा है वो भी आधे अधूरे मन से करता है तो वो भी लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए कोई भी चीज अपन पहले कहें या कि करें, उसे देख लें कि आगम सम्मत आगम में है या नहीं। जितना हमें ज्ञान है वही उतना आगम नहीं है। आगम तो बहुत विशाल है, द्वादशांग तो बहुत बड़ा है। मेरे हाथ में द्वादशांग का मात्र एक अंश भी नहीं आ पाया है। समुद्र की एक बूंद की तरह मेरे पास मेन स्क्रिप्ट जो है वो बचा हुआ है। उसमें अगर उल्लेख मिलता है तब फिर हमें उस पर ज्यादा मीन मेष नहीं करना चाहिए, और सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि सचमुच यह अनुष्ठान मेरे जीवन की पवित्रता के लिए है। भगवान तो निर्मल है ही, मैं उनके ऊपर जल की धारा छोड़कर उनकी निर्मलता का कोई प्रयत्न नहीं करता हूं। मैं राग देश से मलिन हूं। आचार्य माघनंदी स्वामी के चरणों में बैठे, जो कि प्रतिष्ठा पाठ के सबसे प्राचीन प्रणेता हैं। वैसे तो सबसे पहले प्रतिष्ठा इत्यादि मूर्तियों के और बारे में तो लिखा है तिल्लोय पण्णति में, यति वृषभाचार्य ने आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंदगुंद स्वामी उमा स्वामी के टाइम में, उतना प्राचीन है। उसके बाद माघनंदी आचार्य ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा कि भगवान आप वीतरागी हैं, आपके अंदर कोई मलिनता नहीं है, आपकी देह भी परम औदारिक है, लेकिन उस पर जल की धारा छोड़कर मैं अपने राग द्वेष से मलिन आत्मा को और इस देह को दोनों को पवित्र करता हूं। अपने भावों की पवित्रता के लिए मैं आपकी निर्मल देह पर जल की धारा छोड़ रहा हूं, इतना जल डालना जिससे कि जितनी अवगाहना की मूर्ति है वो पूरी की पूरी अभिसिंचित हो जाए, इस प्रक्रिया का नाम है अभिषेक। ये परिभाषा लिखी है, जितने में पूरी अवगाहना वाली मूर्ति जल से अभिषिक्त हो जाए वो अभिषेक की प्रक्रिया है। उससे निकलने वाला जल सुगंधित जल है, जिसे हम गंधोदक कहते हैं, उदक यानी जल और सुगंधित मतलब गंधोदक। और अगर वही जल अपने शरीर पर से डाला जाए तो सिवाय गंदे जल के कुछ नहीं निकलता। मेरी पर्याय अत्यंत अपावन है, मैं अपनी उस पर्याय की पावनता के लिए यह अनुष्ठान कर रहा हूं। मैं अपने स्नान के बारे में तो कभी विचार नहीं करता हूं, लेकिन भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ने के लिए मैं इतना विचार करता हूं कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब फिर आचार सार में जरा देखें क्या लिखते हैं आचार्य भगवंत। वे कहते हैं चार प्रकार का अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक और प्रतिमाभिषेक। एक तीर्थंकर के जीवन में ये चार अभिषेक होते हैं। पहला जन्माभिषेक है जब बालक भगवान जन्म लेते हैं और माता की गोद से महाराज इंद्राणी सची उन्हें इंद्र को सौंपती हैं और इंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाकर सुमेरु पर्वत पर उन्हें विराजमान करके 1008 कलशों से बालक भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र महाराज छायक सम्यक दृष्टि हैं, ध्यान रखना, हमें अपने सम्यक दर्शन की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूं। क्षायक सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र बालक भगवान का अत्यंत श्रद्धा से अभिषेक करते हैं सुमेरु पर ले जाकर, और फिर बाद में उनके रूप को निहारने के लिए 1008 नेत्र बनाते हैं। फिर भी मन प्रसन्न नहीं, फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता, प्रसन्न तो होता, मन संतुष्ट नहीं होता, तब अत्यंत लास विलास से युक्त तांडव नृत्य करते हैं। तांडव के मायने उपद्रव करने वाला नृत्य नहीं है, नहीं तो आप ये समझो, नाम जरूर है उसका, लेकिन अत्यंत अत्यंत शालीनता से इंद्र। और फिर बाद में जब पहुंचते हैं तो चकित हो जाते हैं, तब इंद्राणी हंस करके उन्हें बताती हैं कि आपके मुकुटों की आभा भगवान के देह पर पड़ रही है तो वे बूंदे मोती के समान चमक रही हैं, आप भ्रमित ना हो। पहुंचते चले जाते हैं कि अभी तो और है पानी, अभी तो और है जल, इतना वर्णन किया हुआ है। उधर जब नंदीश्वर जिनालयों में अभिषेक का इंतजार करते हुए अभिषेक प्रेक्षणिका बनी हुई है, कार्य जिसको अपन बालकनी बोलते हैं, उस अभिषेक प्रेक्षणिका में खड़े हुए देव इंतजार करते हैं कि कब आएंगे सौधर्म ईशान इंद्र, तब उनको बुलाते हैं कि ए तेती शीघ्र आओ, आप अभिषेक का अनुष्ठान करो, हम हाथ लगाकर देख करके और अपना जीवन धन्य करेंगे। चाहें तो सौधर्म इंद्र 160 जगह लगे हुए समोह शरण में दिव्य ध्वनि सुनने जा सकते हैं, लेकिन उन 8 दिनों में अष्टानिका में वे वहां ना जाकर के नंदीश्वर जिनालय में भगवान के अभिषेक को पूजा के लिए जाते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि महत्व कितना। मैं ये कहना चाहूं, ये सब क्षायक सम्यक दर्शन से युक्त जीव है और हमारे सम्यक दर्शन का अभी अता पता भी नहीं। व्यवहार से जरूर है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, 7 तत्वों का श्रद्धा ने, आपा पर का वेद विज्ञान है, बस इतना ही है। बाकी कर्मों का शय उपसम उपसम हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो कोई नहीं जान सकता। अवधि ज्ञानी, मन पर ज्ञानी और केवल ज्ञानी के अलावा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से तो हम उसकी खबर भी नहीं लगा सकते। ऐसी स्थिति में अपन विचार करें कि इस पूजा के और अभिषेक के अनुष्ठान से हमें कितना लाभ मिलने वाला, लाभ लेने वालों को देख करके हम स्वयं भी प्रेरणा लें, वो जन्माभिषेक की प्रक्रिया है। और फिर जब तीर्थंकर, हर तीर्थंकर राज्य करेंगे, ये एक्सेप्शन है पंचम काल का, इस हुंडाओ सर्पणी का, पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल का, कि पांच तीर्थंकरों ने राज्य नहीं किया, राजपाठ के लिए उनके पास समय ही नहीं था, उन्हें तपस्या के लिए शीघ्र जाना था, व्याह भी नहीं किया, राज्यकाज भी नहीं संभाला, वरना 2400 तीर्थंकर व्याह भी करते हैं, गृहस्थी बसाते हैं, राज्य संभालते हैं, तब राज्य संभालने से पहले उनका राज्याभिषेक होता है, वह भी स्वर्ग के देवों के द्वारा किया जाता है। फिर जब वे दीक्षा के सम्मुख होते हैं, तब दीक्षा लेने से पहले उनका अभिषेक होता है, वो दीक्षाभिषेक होता है। फिर जब वे अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम छू ही नहीं सकते उनको, स्पर्श भी नहीं कर सकते उस परम औदारिक देह का, ऐसे हाथ डाल करके बड़ा करके कि महाराज नमोस्तु, हमें देख लो, हम आ गए, पांव पल्ले हम आपके, ने पढ़न देव तो बुराई। बहुत लोग हैं, अपने अपने तरह का सोच है लोगों का, अपनी शुद्धि का विचार नहीं करेंगे, अपन चाहे जैसी अवस्था में हो, महाराज स्वस्थ और प्रसन्न अपने स्थान पर बैठे हो, इसका भी विचार नहीं करेंगे, पैर छूना अपने को तो बस, चाहे जैसी अवस्था हो, और नहीं छूने देंगे तो कहेंगे कि ये नहीं को अलग चला थे, और बाकी तो कोई कछु नहीं कहते जी, पता नहीं कौन सी अपनी अलग बनाना चाहते, हम कछु अपनी अलग नहीं बना चाहते, बनाने चाहते होते तो बना ले होती भैया। आचार्य भगवंतों की परंपरा को आगे बढ़ाना है कि अपना कोई नया मत चलाना है, ऐसे धोखे में नहीं रहना, यही प्रक्रिया है। देव गुरु शास्त्र समान है, क्या भगवान के जैसे चाहे कपड़ों में पहन करके और आप पैर छूते हैं, बताइए आप, चाहे जब 24 घंटे करते हैं क्या, नहीं, एक समय पर जाते हैं, नहा धो करके जाते हैं भगवान को, और वो भी एक हाथ दूर से दर्शन करते हैं, मुनि महाराज के लिए लिखा है कि भगवान के दर्शन एक हाथ दूर से, ताकि हमारी सांस उनसे न टकराए, हमारा हाथ उन्हें अचानक न लग जाए, अभिनय हो, इसके लिए कहता हूं, बाकी क्या करना है, खूब आराम से पैर धुलाओ ना, चौके में खूब मौका मिलता है पैर धुलाने का, उधर तो मैं कुछ भी नहीं करता कहता, बल्कि वहां नहीं करोगे तो वापस लौट आऊंगा, वो अनुष्ठान है, लेकिन बोली लेकर के करने का मन होता है, मंच पर होता है कि नहीं, वो भी नहीं करने देता मैं, बड़ी मुश्किल है, नहीं तो एक बोली भई आ जाती, छोड़ो पैसा और जुड़ जाते, कर हो का 4 महीना के पास जुड़ो जुड़ो जो पैसा, बहुत सारी बातें इसमें समाई हुई हैं, आप विचार करते रहना आराम से, फुर्सत से, सब कह देता हूं मैं इस तरह। अपना जो भी धार्मिक कार्य है उसमें क्यों हम लोग जो वास्तविकता है उससे विपरीत कुछ और में ही आनंद लेने की आदत बनाते हैं, क्यों नहीं हम उसकी वास्तविकता को समझ करके उससे कर्मों की निजरा और पुण्य के अर्जन का जो अनुष्ठान है उससे वो लाभ क्यों नहीं ले पाए, यही क्योंकि हमारे मन में तो वैसी ही मिथ्या धारणाएं या मान्यताएं बनी हुई हैं, जिनको अगर कोई आकर इशारा भी करता है तो हम ठीक ऐसे ही जैसे कि दर्पण में अपने चेहरे पर दिखने वाली कालिक को देख करके उससे अपने चेहरे से नहीं हटाते, दर्पण को पहुंचते हैं, हम तो वैसे ही लोग हो गए, हम अपने चेहरे पर लगी कालिक जो दर्पण ने दिखाई है उसे नहीं मिलाना चाहते, हम दर्पण को पहुंचेंगे, शायद इसी में लगी है कालिक, हमारी तो ठीक है सर, हम तो आगम में जो लिखा है उसमें भी कहेंगे कि ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, या ये ऐसा लिखना चाहिए, ये इसमें से मिटा दो, दूसरा लिख दो, नहीं भैया, हमारे अपने फ्रेम में जिनवाणी मां का चित्र नहीं मढ़ा जाएगा, हमें तो जिनवाणी मां का चित्र जिस फ्रेम में है उसके अनुसार ही अपने को बना करके उसे देखना पड़ेगा। जो चौथे प्रकार का अभिषेक है वो प्रतिमाभिषेक है, वो अरहंत अभिषेक नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भी खारिज हो गया कि देखो तो मुनि महाराज तक तो स्नान नहीं करते और भगवान पे जी लोटा की लोटा डालते हैं, ये प्रश्न भी खारिज हो गया वो अरंत भगवान का अभिषेक नहीं है, अरंत भगवान पर आप छू भी नहीं सकते, अभिषेक क्या करेंगे। मुनि महाराज पर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाती, ऐसे ही अरंत भगवान पर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाती, लेकिन पांचों परमेश्वरों की मूर्तियां बना करके उन पर जल की धारा छोड़ने का नाम प्रथमाभिषेक। ये तिल्लोय पंडित्ती में यति वृषभ आचार्य महाराज के, आज तो हवाला दे दे के बात करनी पड़ रही, मेरी आदत में नहीं है कि लाइनें बताऊं, ग्रंथ का नाम बताऊं और आचार्य महाराज बताऊं, लेकिन क्या करें, जमाना है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। बड़ा अजीब लगता है कि कितना कमजोर है हमारा विश्वास और कितने हैं हमारे सामने भ्रम जिनको तोड़ने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भ्रम उत्पन्न करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भ्रम को हटाने के लिए मेहनत, सोने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सपना देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जागने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। जागने पे मालूम पड़ता है कि वो जो देख रहे थे वो तो सपना था, हकीकत नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब अनुष्ठानों के पीछे छिपी हुई कर्मों की निद्रा और पुण्य के अर्जन का जो भाव था उसको उस तक पहुंचने के, वरना अनुष्ठान तो रोज दोहराए जाते रहेंगे लेकिन उनसे महन मिलने वाला लाभ हमारे जीवन को जरा भी स्पर्श नहीं कर पा रहा है। वो जो प्रथमाभिषेक है वो चतुर्थ अभिषेक कहलाता है। तीन अभिषेक हो चुके, ये जो हम रोज अभिषेक करते हैं वो न जन्माभिषेक है, न दीक्षाभिषेक है, न राज्याभिषेक है, न साक्षात अनंत भगवान का अभिषेक है, वो तो जिन बिंब का अभिषेक, वो प्रथमाभिषेक है, वो चतुर्थ अभिषेक, उसका नाम ही चतुर्थ अभिषेक। हम उसे ठाट बाट के साथ बहुत गदगद होकर, पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूर्ण धनी। भी खारिज हो गया कि देखो तो मुनि महाराज तक तो स्नान नहीं करते और भगवान पे जी लोटा की लोटा डालते हैं, ये प्रश्न भी खारिज हो गया। वो अरंत भगवान का अभिषेक नहीं है, अरंत भगवान पर आप छू भी नहीं सकते, अभिषेक क्या करेंगे। मुनि महाराज पर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाती, ऐसी अनंत भगवान पर भी जल की धारा नहीं छोड़ी जाती, लेकिन पांचों परमेश्वरों की मूर्तियां बना करके उन पर जल की धारा छोड़ने का नाम प्रथमाभिषेक। ये तिल्लोय पंडित्ती में यति वृषभ आचार्य महाराज के, आज तो हवाला दे दे के बात करनी पड़ रही, मेरी आदत में नहीं है कि लाइनें बताऊं, ग्रंथ का नाम बताऊं और आचार्य महाराज बताऊं, लेकिन क्या करें, जमाना है, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है। बड़ा अजीब लगता है कि कितना कमजोर है हमारा विश्वास और कितने हैं हमारे सामने भ्रम जिनको तोड़ने के लिए हमें और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भ्रम उत्पन्न करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भ्रम को हटाने के लिए मेहनत, सोने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सपना देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन जागने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। जागने पे मालूम पड़ता है कि वो जो देख रहे थे वो तो सपना था, हकीकत नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन सब अनुष्ठानों के पीछे छिपी हुई कर्मों की निद्रा और पुण्य के अर्जन का जो भाव था उसको उस तक पहुंचने के, वरना अनुष्ठान तो रोज दोहराए जाते रहेंगे लेकिन उनसे महन मिलने वाला लाभ हमारे जीवन को जरा भी स्पर्श नहीं कर पा रहा है। वो जो प्रथमाभिषेक है वो चतुर्थ अभिषेक कहलाता है। तीन अभिषेक हो चुके, ये जो हम रोज अभिषेक करते हैं वो न जन्माभिषेक है, न दीक्षाभिषेक है, न राज्याभिषेक है, न साक्षात अनंत भगवान का अभिषेक है, वो तो जिन बिंब का अभिषेक, वो प्रथमाभिषेक है, वो चतुर्थ अभिषेक, उसका नाम ही चतुर्थ अभिषेक। हम उसे ठाट बाट के साथ बहुत गदगद होकर, पावन भई पर्याय मेरी, मैं भयो पूर्ण धनी, ऐसे भाव से उस अनुष्ठान को अगर हम पूजा पूरा करते हैं। मेरे अपने जीवन में मैंने पहली बार जब ये अनुष्ठान किया था उसकी अनुभूति आज भी भूले नहीं भूलती, मरण के समय भी मुझे वो याद रहेगी अंतिम सांस तक, कि वो अनुभूति अद्भुत है, भगवान को स्पर्श करने की अनुभूति। अब तो अपन चाहे जैसे को गर्दन पकड़ करके उठा रहे, कोई हाथ पकड़ के उठा रहा है भगवान को, कैसे भी उठा रख देते हैं चाहे जैसे। तीन लोक के नाथ हैं, अगर ये मन के भीतर विचार आ जावे तो सारी चीज व्यवस्थित हो जाए। उस भाव से अगर पूजा की जाए, उस भाव से ये अभिषेक किया जाए, इस अभिषेक के पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक कारण को भी हम नहीं खोज पाए तमिलनाडु की पैरासाइकोलॉजी की बहनों ने इस अनुष्ठान के पीछे छुपे हुए साइंस को अपनी लेबोरेटरी में सिद्ध करके बता दिया। जो अभिषेक का अनुष्ठान है वो कहते हैं कि विशेष रूप से धातु की प्रतिमाओं पर संपन्न होना चाहिए, क्योंकि धातु में रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी, चालकता और विद्युत प्रतिरोधकता, ये दोनों चीजें होती हैं। और जब उस धातु की प्रतिमा पर जल की धारा छोड़ी जाती है, तब उस जल की धारा छोड़ने पर रेजिस्टेंस कम होती जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और इन दोनों के मिले जुले परिणाम से नेगेटिव आइंस बनना शुरू होते हैं। जो पानी है वो H प्लस OH माइनस में विभक्त हो जाता है, और वो जो नेगेटिव आइंस हैं वो मूर्ति में से उस अभिषेक के दौरान निकलकर पूरे गर्भगृह में, जहां अभिषेक होता है वहां फैल जाते हैं। जो अभिषेक करने वाले हैं उनके शरीर से भी टकराते हैं, और जो बाहर खड़े देखने वाले हैं उन तक कैसे पहुंचते हैं, चवर ढोरे जाते हैं उस दौरान, तो उन चवर के द्वारा वो ट्रांसफर हो करके बाहर देखने के लिए खड़े हुए लोगों तक पहुंच जाते हैं, वो नेगेटिव आइन। और जो उस अनुष्ठान में नहीं आ पाते हैं और आधे घंटे के भीतर अगर आ जाएं, तो उन्हें वही लाभ गंधोदक के स्पर्श से मिल सकता है, क्योंकि आधे घंटे तक वे नेगेटिव आइंस उस गंधोदक में भी रहते हैं। उसके बाद तो फिर वो गंधोदक श्रद्धा का जल है, फिर वो आयोनाइज्ड वाटर नहीं है, फिर इतना साइंस उसके पीछे। और ये नेगेटिव आइंस करते क्या, अगर इस वातावरण में से नेगेटिव आइंस खत्म हो जाए तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। नेगेटिव आइंस हमारे ऑक्सीजन को अंदर हीमोग्लोबिन प्रोसेस होती है वो ब्लड में ले जाकर उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने में मदद करते हैं। ये हीमोग्लोबिन की प्रक्रिया को नेगेटिव आइंस व्यवस्थित करते हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए यह अभिषेक की प्रक्रिया है। मन अत्यंत निर्मल होता है और शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो जाता है इस अनुष्ठान की प्रक्रिया, इतना बड़ा साइंस उसके पीछे छिपा हुआ है। भावनाएं तो है ही, मन की निर्मलता, चेतना की निर्मलता का अनुष्ठान तो है ही, सब प्रकार से अगर हम इसका अनुष्ठान का ठीक ठीक ध्यान रख करके और इसको करें तो कोई वजह नहीं है कि इससे हमें लाभ नहीं मिल सकता। मैं अपने अभिषेक की वो घटना सुना रहा था, फिर द्रव्य की बात फिर करेंगे। मेरा रोज का क्रम था, किसी ने मुझसे कहा नहीं था, बस मन में पता नहीं कैसे और पूजा करने की शुरुआत हो गई। अचानक ही मैं बहुत याद करता हूँ कि कब मैंने शुरू किया। महापूजाओं में तो घर की परंपरा थी तो खड़े हो जाते थे महापूजा में, रोज पूजा करने का उपक्रम अचानक ही शुरू हुआ जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, तब 1977 में। और पूजा आखिरी वेदी पर नेमिनाथ भगवान की 4.5 फीट अवगाहना वाली एक ही प्रतिमा जी थी, उन पर मैं पूजा करता था, और केवल रवि किरणों वाली एक ही पूजा फिक्स थी, वही करता था। कभी कभी मन होता था इतवार के दिन तो महावीर भगवान की पूजा करता था। मैंने कभी पूजा में कैसे द्रव चढ़ाना चाहिए किसी से नहीं पूछा, मेरी जैसी बुद्धि में आता था भावनाओं के अनुसार मैंने पूजा करी और बहुत आनंद लिया। और मैं मानता हूँ कि उस पूजा के अनुष्ठान का फल है कि मुझे कभी भी अपनी पढ़ाई में कमजोरी का एहसास नहीं हुआ, और उस पूजा के अनुष्ठान का प्रतिफल है कि मुझे महाव्रत अंगीकार करने में मदद मिली, आचार्य महाराज की कृपा हुई उसी एक पूजा के अनुष्ठान से। मैं तो यही मानता हूँ कर्मों की निद्रा के लिए मुझे 1.5 घंटे लगता था एक ही पूजा में, पता नहीं आप कितनी कर लेते होंगे, मैं उतना होशियार नहीं था, कमजोर था, मुझे तो एक ही में बहुत 1.5 घंटे लग जाता था पूरा। अब मैं 1.5 घंटे तक क्या करता होऊंगा, आपके मन में आएगा कि अरे पूजा तो कुल मिलाकर के 20-25 मिनट की है, ये क्या करते, अर्घ वर्घ चढ़ाते होंगे, तो अर्घ एक भी नहीं चढ़ाता, पूजा ही करती थी निखालिस पूजा। लेकिन जिस लाइन में मन लग गया तो वो लाइन कितनी देर तक बोलेंगे, इसलिए हमारे साथ कोई नहीं करता था पूजा, कि इनका कोई भरोसा नहीं, कब ये किसी लाइन पे अटक जाए तो उसी लाइन को, जैसे कि रिकॉर्ड नहीं फंस जाता वैसे ही फंस जाता, पढ़ते रहेंगे उसी को पढ़ते रहेंगे। अपनी बहन से बहुत प्यार था, एक क्षण भी अलग रहना तो सोच भी नहीं सकता था, बहुत मोही जीव तो रहा मैं, अभी भी हूं। वो वाला मोह जो संसार बढ़ाने वाला है, वो तो इतना तो कह सकता हूं कि अब नहीं है, लेकिन धर्म के प्रति अनुराग और धर्मात्मा के प्रति अनुराग तो जीवन की अंतिम सांस तक रहेगा, रहना ही चाहिए, मुक्ति होने तक रहेगा। तब विवाह के बाद जब भेजने जाता था तो दो दो तीन तीन दिन तक भोजन नहीं कर पाता था, तब उन क्षणों में पूजा करता था, तब फिर जिस जिसको अपना माना वो छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल चेतन हूं। तब ये लाइने में कितनी बार बोलता था, जब तक कि मैं रो धो करके अपना जी हल्का नहीं कर लेता था तब तक बोलता था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कहता तो कुछ हूं लेकिन अभी उस चीज को मैं अपने करनी में तो लाई नहीं पाया हूं, मेरी कथनी में जरूर आई है, मैंने लाइने दोहरा ली लेकिन मेरे जीवन में कहां आई। अब एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पूजा से पहले भगवान का अभिषेक नहीं हो पाया, मैंने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी आपको मालूम है कि मेरा टाइम फिक्स है, मैं 6 से 7:30 बजे तक पूजा करता हूँ, 7:30 बजे मुझे दूसरा कार्य करके ठीक 9 बजे कॉलेज पहुँच जाना, अब बताइएगा। तो बोले भैया आप तो रोज पूजा के लिए आते हो, आप ही हमारी थोड़ी मदद कर दो। हमने कहा क्या? बोले हम शुरू की वेदी से प्रक्षाल शुरू करेंगे, अभिषेक तो जब सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब बीच की वेदी पे करेंगे, प्रक्षाल सब मूर्तियों का कपड़े से पहुंचना ही तो है, मैं शुरू वाले से करूंगा, आप आखिरी वाले से शुरू करें, एक सूखे कपड़े से पहुंच के, फिर गीले से पहुंच के, फिर सूखे से पहुंच के, और 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, और कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं चलेगा। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है ये, उनको मैंने ऐसे कहा मेरे बस का नहीं है ये, मुझे बहुत भय लगता है भगवान के पास तक जाने में। मैंने कहा नहीं आप एक बार कोशिश तो करिए। 3 सीढ़ियां चढ़ करके भगवान की वेदी तक पहुंचा जाता था, जिस पर भगवान विराजे हैं सिंहासन पर, उतनी ऊंचाई पर तो नहीं जा सकते जहां की भगवान विराजे हैं, कोई जा सकता है क्या? कोई नहीं जा सकता, बिना भगवान बने तो उतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते, पत्थर पर खड़े हो जाओ भले ही आप सीढ़ियों पर खड़े हो जाओ। अब 27 बार नमोकार मंत्र कपते कपते, पैर कपने लगे, सारा शरीर रोमांचित है, एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं भगवान के निकट पहुंच करके, और सूखे कपड़े से भगवान का प्रक्षाल किया, फिर गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से करके वापस आ गए, सारा शरीर पसीने पसीने हो गया, कुछ भी ध्यान नहीं है। फिर पूजा शुरू कर दी तो पूजा करते समय फिर ध्यान आया कि अरे इतनी घबराहट की क्या बात थी, क्या हुआ था मुझे उन क्षणों में। तब एक एक चीज याद आई कि कैसे मैं ऊपर गया, कैसे भगवान को स्पर्श किया, जब मैं पहुंच रहा था तो मैंने क्यों आंखों के पास चेहरे के पास धीरे से पहुंचा और पैरों तक आते आते जोर से पहुंच दिया, आखिर बात क्या थी। बात अंतरंग में एक ही थी कि मानो साक्षात भगवान हैं, यहां आंखों के पास धीरे से पहुंचो, लग ना जाए पैर के पास जोर से पहुंच। कितनी एकमेकता तद्रूपता उन क्षणों में हो गई, हो जाती होगी हर अभिषेक करने वाले की, होनी ही चाहिए, भगवान के स्पर्श करने का जैसे सौभाग्य मिला हो अभिषेक करने के लिए, तब कैसे नहीं परिणामों विशुद्धि आएगी, कैसे नहीं निर्मलता आएगी। यह अनुष्ठान उन क्षणों में हमारे परिणामों को निर्मल बनाने का है, विशुद्धि बढ़ने का। कषायों की मंदता होगी, विशुद्धि बढ़ेगी। हम क्यों इस अनुष्ठान से वंचित हैं? कम से कम अपने जीवन में एक बार जिन बिंब के अभिषेक का, एक बार उनके स्पर्श का सौभाग्य तो लेना ही चाहिए। अभी तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कि ये अधिकार प्राप्त है कि वे कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपने उस अधिकार का उपयोग नहीं किया होगा और एक भी बार भगवान का स्पर्श नहीं किया होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार तो करके देखिएगा, भगवान के स्पर्श करने का सौभाग्य हमारे अंतरंग को बदलने में कारण बन जाता है। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, वे तो भावना भाते हैं कि मुझे ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं भगवान का स्पर्श कर सकूं। और हमें अगर वो सौभाग्य मिला है तो क्यों नहीं हम उसका लाभ लेते हैं और अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके, अपने कर्मों की निद्रा करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। चाहें तो हम इस पूजा और अभिषेक के अनुष्ठान से अपने जीवन को निर्मल बनाकर सार्थक कर सकते हैं। इसी भावना के साथ पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पद में निष्कंटक बोता हो, तो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वन चारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की झड़ियों में, अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फूल झड़ियां, बंधन कर कर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां, तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, विद्या समना ज्ञान के प्रकाश विको आप पर वास विको अनुशिव कानी है, छाहों द्रव्य जान विखो बंध विधि भान विखो स्वपर पिछान विखो परम प्रमाणी है, अनुभवताय विखो जीवों के जताय विखो अवन सताय विखो।
जीवन है।